मेरे अत्यंत आत्मीय युवा साथियों नमस्कार। आज 1 अगस्त 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं मोहम्मद अंसार मलिक, आप डूंगरपुर राजस्थान से हैं, और शुभम शर्मा, आपका गांव है विशुनागा, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे जो इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम है, हमारे प्रशासन में जो कानून नियम को लागू करने की जो क्षमता होनी चाहिए या कह लीजिए कि जो अवसर होने चाहिए, उसको लेकर के मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन। लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड, कुछ समय से अखबारों में आप एक शब्द पढ़ रहे होंगे, वो है सॉवरेन बॉन्ड। पढ़ने हिंदी में भी आपको यही शब्द पढ़ने को मिल रहा होगा। सॉवरेन की स्पेलिंग है SOVEREIGN, सॉवरेन बॉन्ड, है ना। बॉन्ड का मतलब है कि दो लोगों के बीच में कोई करार हुआ है, कोई समझौता हुआ है, यही उसी को कहते हैं बॉन्ड। बाइंडिंग, इसी से बाइंडिंग बना है कि हम दोनों के बीच में एक बाइंडिंग है, एक समझौता है। तो यह है सॉवरेन बॉन्ड। तो देखिए, सॉवरेन का तो मतलब होता है सार्वभौम, मतलब जो सरकार होती है वो सॉवरेन होती है ना, बिल्कुल अपने आप में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती, उसकी सार्वभौमिकता बिल्कुल अक्षुण रहती है। तो सॉवरेन बॉन्ड जो है बेसिकली इस आधार पर आप कह सकते हैं कि देश की सरकार जारी करती है, राष्ट्रीय सरकार जारी करती है। इस बार के बजट में चूंकि यह शब्द आया है इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो सॉवरेन बॉन्ड वह होता है जिसे देश की सरकार जारी करती है, इसे कोई प्राइवेट कंपनी जारी नहीं कर सकती, वो सिंपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि इस बॉन्ड के बदले में, जैसे आप मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड खरीद लीजिए, एक कागज है, इनफैक्ट इसके जरिए सरकार मार्केट से धन उधार लेती है, सरकार को धन की जरूरत है। अब वो धन कैसे ले, तो बॉन्ड कहते कि भाई आप 10,000 5,000 के हैं, जितने भी धन का आप बॉन्ड लेना चाहें उतने बॉन्ड ले लीजिए, इसके बदले में हम आपको इतना इतना ब्याज देंगे, उसका इतना इसकी ब्याज दर है, और समय पूरा होने पर आपको हम आपका पैसा लौटा देंगे। तो ये है सॉवरेन बॉन्ड। तो खासकर सरकार ने अभी विदेशों से धन जुटाने के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी किए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। आज इकोनॉमिक टाइम्स का इस पर एक आर्टिकल भी है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा उसमें की गई है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सका तो मैं उसका हिंदी वर्जन आप लोगों को समय आने पर उपलब्ध कराऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, खासकर ये हमारे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके बारे में है। आपको मालूम होगा कि 2016 में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी, उस समय इसकी बड़ी तारीफ हुई और सच पूछे तो मुझ जैसे लोगों को भी यही लग रहा था कि ये बहुत सफल होगा, लेकिन इनफैक्ट अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये मिल रहा है कि नहीं, धीरे धीरे किसान अपनी फसलों का बीमा कराने से मुंह मोड़ रहे हैं और घटते घटते इसका जो प्रतिशत हो गया है, जो रकबा जो खेती की जाती है जिस जमीन पर, उसका केवल 24% क्षेत्र ही बीमा में आ पाया है, और उसमें भी जो बड़े किसान हैं वही इसका थोड़ा बहुत फायदा ले पा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे यहां तो 85% जो किसान है वो सीमांत किसान है। इसके कारण क्या है, क्यों ये फसल बीमा योजना सफल नहीं हो पा रही है, इस एडिटोरियल में कुछ बातें दी हुई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समीक्षात्मक तरीके से जब भी इस पर प्रश्न पूछा जाएगा आएगा। तो इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे कि किसानों की फसल खराब हो गई तो पता लगा कि उसके नुकसान कितने का नुकसान हुआ है, कितनी फसल खराब हुई है, उसी में बहुत ज्यादा देरी हो रही है, और चलिए अगर नुकसान का जायजा ले भी लिया गया तो पता लगा कि अब जो किसानों को भुगतान मिलना चाहिए, उनके दावे का जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। फिर जो ट्रांसपेरेंसी है वो होती ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि मान लीजिए कि किसी किसान ने अपने किसी फसल के लिए बैंक से कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, तो अब जो बीमा होगा वो बकायदे बीमा कंपनी और बैंक के बीच में होगा, बेचारा किसान उसमें है ही नहीं। अब पता लगा कि उसकी फसल नष्ट हो गई, तो अब जो बीमा कंपनी है वो बैंक को किसान के बिहाव पर पैसा देगी, तो वहां भी किसान नहीं है, तो किसान के साथ क्या हो रहा है किसान को कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं इसके साथ हैं, और इसको लेकर के बहुत अच्छा ये एडिटोरियल कमेंट है। मैं चाहूंगा कि आप इसे बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें राज्य सरकारों को देखिए लागू करना होता है, इस बीमा का 50% राज्य सरकारों को देना होता है, तो राज्य सरकारें भी अपने दायित्व को ठीक ढंग से नहीं निभा पा रही हैं। तो इस तरह की बहुत सी बातें आपको इसमें पढ़ने जानने को मिलेंगी, और ये ऐसा टॉपिक है जिसे आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, हिंदी में है। अफगान में जो शांति की प्रक्रिया शुरू हो रही है, अफगानिस्तान से जब पहले अमेरिका ने सेना वापस बुलाई थी, बहुत पहले की बात है, शायद 2014-15 की बात है, तो उस समय एक प्रश्न पूछा गया था कि वहां से तो अमेरिका अब अपनी सेना विड्रॉ करने के लिए की बात कर रहा है, तो अब भारत अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करेगा। लगभग लगभग वही स्थिति यहां फिर से आ रही है। आप अगर इंटरनेशनल अफेयर में जरा भी रुचि रख रहे होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, तो ट्रंप साहब को कुछ ऐसा दिखाना है कि भैया मैंने बड़ा काम किया है, और अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में है। अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में क्यों है? वो इसलिए है कि ताकि अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग आतंकवादी न कर सके, आतंकवादी वहां रहकर अपनी ताकत न बढ़ा सके, और उसे दुनिया की शांति को खतरा न हो। ठीक है, वहां जो इस तरह के है वो तालिबान है, तो अफगानिस्तान की तालिबान और बकायदे अमेरिका में आपस में बातचीत हो रही है कि किस तरह से अब वहां शांति स्थापित हो जाए। अमेरिका तालिबानियों से ये गारंटी लेना चाहता है कि भैया आप इसका उपयोग, इस धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं करेंगे, और अमेरिका को लग रहा है कि हम अपनी सेना वापस ले आए, क्योंकि अमेरिका में भी इस बात का विरोध हो रहा है कि हमारे सैनिक अफगानिस्तान में हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, हमारे सैनिक मारे भी जाते हैं। तो अगर ट्रंप साहब इसमें सफल हो गए तो बटने चले कि अगला चुनाव उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा, तो इस कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप देखिए कि इसमें भारत का क्या लेना देना है, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दी। अगर अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना वापस चली जाती है तो भारत का यह डर है कि कहीं फिर से ये जो तालिबानी है अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां न शुरू कर दें, और अगर उन्होंने अफगानिस्तान वालों में आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो गई तो आप समझिए कि उसका भारत पर सीधे सीधे असर पड़ेगा। अफगानिस्तान के बगल में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हमारा बिल्कुल आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व की एकदम टॉप पर जाकर के कुछ सीमा मिलती भी है, यानी कि अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तानी गतिविधियां और तेज हो गई या आतंकवादी गतिविधियां तेज हो गई तो अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान से हम ऑलरेडी परेशान ही है आतंकवादियों को लेकर के, तो आप देखिए कि भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी। और फिर अफगानिस्तान और भारत के अभी बहुत अच्छे संबंध हैं, भारत ने अफगानिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, तो उसको लेकर के भी भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये ऐसी घटना है जिस पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है प्रॉब्लम ऑफ इन्फोर्समेंट। खासकर मैंने इस विषय को इस संदर्भ में चुना है, आपने कल न्यूज चैनल्स पर देखा होगा कि भारत सरकार ने अभी मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित किया है। मोटर वाहन कानून हमारा 1988 में पहला बना था, इसके बाद अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंश है, जो बेसिक है, वो ये है कि जुर्माने को बहुत बड़ा कर दिया जाए, सख्त कर दिया जाए, यानी जुर्माने की राशि बहुत बढ़ा दी गई है। आप लोग जिस तरह से चलाते रहते हैं वाहन, तो कुछ जुर्माने की राशि मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई सीट बेल्ट बिना लगाए हुए फोर व्हीलर चलाएगा तो पहले 100 रुपए देने पड़ते थे, अब उसको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि आप हेलमेट नहीं लगाएंगे, इस बाइक चलाते हैं, आप स्कूटर चलाते हैं, तो पहले थोड़ी सी बात से बात बन जाती थी पैसे से, अब आपको पता लगेगा कि 1000 रुपए देना पड़ेगा। अगर कोई नशे में वाहन चलाएगा तो उसे 10000 रुपए देना पड़ेगा। अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाएगा तो बहुत अधिक पैसे देने पड़ेंगे। यहां तक कि अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए तो बहुत ही सख्त जुर्माना है कि उसके पेरेंट्स को 3 साल की सजा हो सकती है, गाड़ी मालिक को सजा हो सकती है 25000 रुपए का जुर्माना। इस तरह से उसे बहुत ही सख्त किया गया है। चैनल में कल बहुत अच्छा डीडी चैनल पर इसके बारे में बहुत अच्छा सा दिखाया जा रहा था कि हमारे यहां दुर्घटनाएं क्यों इतनी ज्यादा हो रही है। तो उसके पीछे ऐसे बहुत से कारण है कि हमारे सड़कें ठीक से नहीं बन रही हैं। इसमें उनके लिए भी प्रावधान किया गया है कि जो सड़क बनाने वाली कंपनी है अगर ठीक से नहीं बनाएगी तो उस पर कितना बड़ा जुर्माना किया जा सकता है। और मैं एक बात और भी बता दूं कि जो जुर्माने की राशि है, अगर किसी गवर्नमेंट व्यक्ति ने, सरकारी अधिकारी कर्मचारी ने अगर इसका उल्लंघन किया तो जुर्माने की राशि दुगुनी हो जाएगी, और होना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपका खुद अपना एक दायित्व होता है, तो आपको तो ज्यादा सजा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, और प्रोविजन कर दिया गया। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड है। मैंने खासकर यहां जो बात आपके सामने उठाई है वो ये है कि हमारे यहां कानून तो हैं, राइट, उन जो रियल प्रॉब्लम है वो कानूनों का लागू न हो पाना है। देखिए ठीक है, अगर सजा सख्त नहीं होगी तो नागरिक कानूनों का उल्लंघन करने में फिर हिचकते नहीं है, डरते नहीं है। ठीक है यार, हेलमेट कभी पकड़े जाएंगे, महीने में एक आध बार पकड़े जाते हैं तो 100 रुपए दे देंगे जुर्माना, कोई बात नहीं। लेकिन जब पता लगेगा कि 1000 का नोट जाएगा तो वो थोड़े से सहमेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जो कल चैनल पर उठाया भी गया था, और हमारे फॉर्मर जो सेक्रेटरी रहे हैं सड़क परिवहन के, उन्होंने ये बात कही थी कि हमें देखना यह होगा कि भाई 1000 रुपए का जुर्माना है, पता लगा किसी ने पकड़ लिया तो अब वो कहेगा भैया देखो अगर जुर्माना देना है तो 1000 रुपए देना पड़ेगा, मैं रसीद काट देता हूं, नहीं तो 2-4-500 रुपए में सौदा कर लो। बोली ये हमारे यहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे मैंने कहा है इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम, कि कानून तो है लेकिन उन कानून को लागू करने के लिए जो ढांचा चाहिए, जो पूरी की पूरी प्रणाली चाहिए, जो निगरानी चाहिए, उसका हमारे यहां जबरदस्त रूप से अभाव है। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कुछ और भी मैकेनिज्म होते हैं, उनके ऊपर आपने किसको बैठा रखा है। सबसे बड़ी जो भारतीय प्रशासन की एक समस्या है, चाहे आप जुडिशरी में देख लीजिए, चाहे आप हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, चाहे आप एजुकेशन में देख लीजिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, चाहे आप पुलिस में देख लीजिए, वो है ह्यूमन पावर की कमी, मतलब जो जन संसाधन होता है, रिसोर्सेज कह लीजिए, उसकी कमी। आपने अगर सुपर 30 फिल्म देखी हो तो देखते आप पाएंगे कि उसमें एक छोटा सा प्रसंग आया कि जो छोटा भाई है वो थाने पहुंचता है कि भैया मेरे भाई को इस तरह से थ्रेट मिल रही है, उसका जीवन खतरे में है, तो उनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। तो पुलिस वाला क्या कहता है, ये थाना है, यहां कुल 42 पुलिस वाले हैं, इसमें से 25 लोग वीआईपी ड्यूटी पर हैं, अब जो इतने बचे इसमें से इतने लोग छुट्टी पर हैं, इतने लोग बीमार हैं, उसकी पत्नी वहां एडमिट है, इन लोगों को यहां लगा रखा है, तो हम आपके भाई को कहां से सुरक्षा प्रदान करें। यानी कि जो जितने लोग होने चाहिए सभी जगह हमारा प्रतिशत बहुत कम है, आप अगर डेटा उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार तो समस्या है ही, लेकिन चलिए भ्रष्टाचार की समस्या को अगर आपको नियंत्रित करना है तो उसके लिए दूसरे उपाय हैं, क्योंकि जो इस तरह से भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं उनके लिए भी बहुत जबरदस्त रूप से सख्त प्रावधान किए जाए, और प्रावधान ही नहीं किए जाए बल्कि उन्हें लागू भी किया जाए। जब वहां से लागू होने लगेगा तो फिर इन्फोर्समेंट भी होने लगेगा, और जब इन्फोर्समेंट होने लगेगा तब नागरिकों के मन में यह भय पैदा होगा कि नहीं नहीं हम इतनी लिबर्टी नहीं ले सकते। और फ्रेंड्स, चूंकि दुनिया के लगभग 40 देशों में तो मैं जा चुका हूं, जहां भी बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, सिचुएशन बहुत अच्छी आपको दिखाई देती है, अगर वहां के कानूनों के बारे में आप जानेंगे तो दंड के जो प्रावधान है बहुत ही सख्त है। पता लगा कि सिंगापुर में जाइए, अगर आपने कहीं थोड़ा सा थूक भी दिया तो आपके 1000 रुपए चले गए, और बकायदे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, आप नहीं कह सकते कि हमने ऐसा नहीं किया है। तो अगर हमें वास्तव में इन सबको आप कह लीजिए व्यवस्था में ला करके और उसे ठीक ठाक करना है, तो बहुत जरूरी है कि इन कानूनों का जो इन्फोर्समेंट है, जो प्रवर्तन होना चाहिए, उस पर भी बाकायदे ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तथ्य मुझे और कहना है कि कल मुझे बहुत से मेल मिले हैं जिसमें स्टूडेंट ने संघ लोक सेवा आयोग के पिन कोड के बारे में जानना चाहा है। मैंने कल भी पिन कोड बताया था, संघ लोक सेवा आयोग का जो पिन कोड है मित्रों वो है 11-00-69। अगर आपने पहले बिना पिन कोड के भेज दिया है तो हो सकता है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, शाहजहां रोड आपने लिखा ही है तो पत्र पहुंच भी सकता है, नहीं तो आप चाहें तो दोबारा भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा फिर से एक अनुरोध है कि प्लीज अपना निवेदन भेजने में कोई भी आलस्य न करें। आप बिल्कुल न सोचें कि मेरे बिहाफ पर तो उसने भेज दिया होगा, प्लीज प्लीज एंड प्लीज आप अपना काम जरूर करें। दो काम आपके जिम्मे है कि आप एक आवेदन बकायदे संघ लोक सेवा आयोग को भेजें, और दूसरा यह है कि सोशल मीडिया के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस आर्टिकल को पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: राकेश कुमार राजभर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अहमद, विनीत शुक्ला, धनराज सिंह, गौरव मेघवाल उदयपुर राजस्थान से, पायल खत्री आप भी उदयपुर राजस्थान से ही हैं, विकास कुमार, अंकुर भंडारा महाराष्ट्र से, सूरज कुमार और अंकुश सैनी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।